अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम,
अयोध्यावासी राम।
सब गाएंगे, सब कहेंगे
राम राम, दशरथ नंदन राम,
अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम। दशरथ नंदन राम राम,
दशरथ नंदन राम,
दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम,
पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम,
पतित पावन सीता मोहन राम राम,
पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम,
सीता मोहन राम।
भगवान की।
अयोध्या वासी
पावन सीता राम
सीता राम जय सीता राम
सीता
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृपया सब लोग पीछे से गाइएगा, कोई भी चुप नहीं रहेगा, ठीक है?
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare,
Hare Rama Hare Rama,
Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare, Hare
Rama Rama Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Jai Shri Ram
Hare Rama Hare Rama
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त कान्त नमोस्तुते श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृणामि रामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुकृषे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कथा तो अब तक भी प्रारंभ नहीं हुई, ऐसा सोचते या समझते होंगे, किंतु ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन ये भगवान नाम ही कथा ही है, या कथा का ये अंग है या शुभारंभ है, या भगवान का और एक स्वरूप ही है। भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के विग्रह, मूर्ति, ये भगवान के अलग अलग स्वरूप है। स्वरूप ये रूप है, आप तो सुने ही, ये रूप है, लेकिन किसका रूप है? स्वरूप, भगवान का स्वयं का ये रूप है। केवल जिनका हम दर्शन करते हैं, सुंदर दे ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेहुनिया, उनका ध्यान करते हैं तो केवल वही रूप नहीं है, वो भी एक रूप है, वो भी एक स्वरूप है भगवान का, लेकिन वो एक रूप या एक स्वरूप हुआ भगवान का। भगवान का रूप होना एक स्वरूप हुआ, भगवान का नाम भी एक भगवान का स्वरूप ही है। भगवान का नाम ही या भी भगवान ही है, इसलिए शास्त्र में कहा भी है, अभिन्नत्वात् अभिन्नत्वात् नाम नामिनो नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम और नामी, भगवान का नाम और फिर उनके जिनका वो नाम है वे नामी, जैसे धाम और धामी होते हैं, तो वह ये नाम और नामी, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो ये नाम कीर्तन कथा के प्रारंभ में हम करते हैं, ये भी भगवान ही है, ये भी कथा नहीं कहते लेकिन कीर्तन एक एक लीला कीर्तन होता है, लीला कीर्तन जब कथा होती है तो उसमें कथा में भगवान की लीला का भी वर्णन होता है तो उसको लीला कीर्तन कहते हैं। कीर्तन के भी अलग अलग प्रकार, एक लीला कीर्तन, फिर नाम कीर्तन, संकीर्तन, नाम कीर्तन वो भगवान का एक कीर्तन हुआ, नाम कीर्तन, फिर भगवान के रूप का कीर्तन, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन। कीर्तन मतलब गौरव, कीर्ति, यशगान, भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धाम का, ये सारे भगवान के स्वरूप है। एक दूसरों से कोई अलग अलग नहीं है, ये नाम अलग और भगवान अलग, और नाम अलग और लीला और ही कुछ है, और धाम और कुछ तीसरी बात है, या तथ्य या सत्य या रूप है, ऐसी ये सब, ये सभी मिलके ये भगवान है। और ये सब अचिंत्य तो है ही। श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः, भगवान का नाम, श्री कृष्ण नाम इत्यादि, ग्राह्यम इंद्रियैः, अपने इंद्रियों से इनको, इसको पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, भगवान के नाम रूप गुण लीला ये अचिंत्य है। हमने तो हम श्रवण कर सकते हैं, श्रवण से फिर जीव को, श्रवण से स्मरण होता है, भगवान के संबंध में जीव सुनता है, श्रवण करता है, तो उसको आई नो जीव को पता है, जीवात्मा को भगवान का पूरा पता है, ही नोज, लेकिन उसको कहते फॉरगॉटन, वो भूल गया। या उसको भुलाया गया, या भूलना चाहता था तो वैसी व्यवस्था की हुई है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं ये भूलना जो है फॉरगेटफुलनेस ही भगवान से ही आती है, भगवान की व्यवस्था है। हम माया में, हम भ्रम में है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, किसने देखा है, ये जो सब चलता रहता है, ये सब, ये सृष्टि, ये विचारधारा भी कहो, ये लॉजिक, तर्क वितर्क, इसकी सृष्टि भी भगवान की ही है, और उसमें हम उसे प्रभावित, हम में से कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं, और फिर और यही बातें हमें फिर भुला देती है, हमको स्वयं को भी और भगवान को भी। किंतु जब हम सुनते हैं, फिर सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर भगवान के नाम का भी श्रवण करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, विष्णु का, कृष्ण का, राम का श्रवण कीर्तन हो तो फिर विष्णु का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, राम का स्मरण होगा। आपका स्वागत है। हम प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न होंगे ही, है ही, या हम प्रसन्न है आप सभी को भगवान यहाँ ले आए, मुझे भी ले आए, और हम एक दूसरों को मिलाए हैं, और कुछ संवाद यहाँ करते करवाते हैं भगवान हमसे। ये भगवान का विशेष अनुग्रह हम सभी सभी पर, मतलब हम सभी जीवों पर, हुआ तो धाम में तो हुआ, जब अब धाम की बात कर, धाम में तो भगवान का रूप भी है, फिर धाम में भगवान का कीर्तन भी है, धाम में भगवान का क्या है कथा भी है, धाम में भगवान का प्रसाद भी है, या कथा गानम नाट्यम ये सब धाम में होता है, कंप्लीट पैकेज धाम में, सब भगवान के सारे स्वरूपों का दर्शन परिचय, उनकी कथा लीला सत्य तथ्य तत्व सिद्धांत हम एक ही साथ फिर सुनते हैं। धाम लीला में जैसे हम यहाँ प्रतिदिन एकत्रित होके अलग अलग लीला अलग अलग धामों का मतलब विवाह के धाम के तत्व का भी कुछ हम विचार थोड़ा थोड़ा करते आ ही रहे हैं। हर बात को इसका तत्व हमें समझना चाहिए। अरे बो अब सभी शांत हो गए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, भगवान कहे तत्व तत्वतः, जो तत्वतः जानेंगे तत्व जानेंगे, नाम तत्व है फिर, धाम तत्व है, गुरु तत्व है, कई सारे तत्व है, सिद्धांत है, तो तत्वतः जो जानेगा तो वही पाएगा, और तो खोएंगे क्या पाएगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, पुनर्जन्म नहीं उनके लिए जो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम को तत्वतः जानते हैं, उसका तत्व का श्रवण सिद्धांत तत्ववेत्ताओं से शास्त्रों से, या शास्त्रज्ञ जो है, शास्त्रज्ञ मतलब शास्त्र के ज्ञाता है, वो केवल रसायन शास्त्र और ये शास्त्र ऑल दिस साइंसेस उसी से हम परिचित है, उसको हम शास्त्र कहते हैं, दैट इज साइंस। आज टुडे साइंस का क्लास है, शास्त्र का क्लास है, लेकिन ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, भगवान गीता में शास्त्र कौन सा शास्त्र, गीता शास्त्र कि मन्ये शास्त्र विस्तरई, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरई, जब गीता ही ग्रंथ हमको प्राप्त, अन्य शास्त्रों के विस्तार की आवश्यकता ही क्या है, सभी महिमा तो शास्त्र का, ये शास्त्र है गीता शास्त्र, भागवत शास्त्र, शास्त्र साइंस साइंस, तो इन शास्त्रों को जो जानता है, गीता भागवत वेद पुराण ये सब शास्त्रज्ञ, उनको शास्त्रज्ञ, दीज आर द साइंटिस्ट, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वॉज अ साइंटिस्ट, वे शास्त्रज्ञ थे, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और कई सारे हमारे मध्वाचार्य रामानुजाचार्य इत्यादि इत्यादि सर्व शास्त्रज्ञ, और एक ऊंचा दिव्य अलौकिक शास्त्र को के ज्ञाता ये, नॉट जस्ट मंडेन भौतिक मिट्टी का मिट्टी की स्टडी, केमिकल्स एंड या वाटर अर्थ फायर एयर इसका स्टडी, एनालिटिकल स्टडी इसका तुलनात्मक अभ्यास, इज वेरी लो क्लास, ये स्टडी बड़ी निम्न श्रेणी की है, और ये शास्त्र भी मरे निम्न है, लोअर क्लास, द हाईएस्ट हाईएस्ट क्लास, जिसमें आत्मा का शास्त्र, परमात्मा का शास्त्र, अति सूक्ष्म शास्त्र सिद्धांत जिसमें है, इसीलिए भगवान से गीता जो शास्त्र है उसको कहे राज विद्या। जो गीता में जो विद्या है, गीता जो शास्त्र है, ये कैसा है? राज विद्या। और विद्याएं भी है, धन कमाने की विद्या, कई प्रकार की विद्या है आजकल, व्यापार भी बन गया विद्या के, बिक्री का, बेचने का, सब बिजनेस हुआ। लेकिन गीता शास्त्र, भागवत शास्त्र, भगवत तत्व विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, आत्मा, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, ये इन शास्त्रों को भगवान के राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, और तो ऑर्डिनरी नॉलेज, दिस इज किंग ऑफ नॉलेज, विद्याओं का राजा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी पुत्र का जो गीत है भगवत गीता, वो शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र, रामायण, ये शास्त्र। और एक दिन कह रहे थे ये संपत्ति भी है, और यही है, इसी से बनता है भारत, महाभारत भी और भारत भी, या भारत से फिर ये गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, वेद पुराण, ये शास्त्र का ज्ञान अलग करो तो भारत नहीं रहा। भाव 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 मतलब प्रकाश, प्रकाश में जो लोग हैं, प्रकाश में तल्लीन है, जिनको दिखाई दे रहा है यथावत, जो भी है एज इट इज, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं भारत, तो कौन सा? तो गीता, गीता का प्रकाश, ये श्रीमद् भागवत का प्रकाश। अधुनो अर्क उदितः, कलयुग के प्रारंभ में लोगों की दृष्टि नष्ट हुई, कलौ नष्ट द्रशामीशाम, तो भगवान ने लाइट, फ्लड लाइट, लाइट ऑफ भागवत, भागवत की लाइट, भागवत का प्रकाश, श्रीमद् भागवत दिया। पुराण अर्क, ये महापुराण, भागवत पुराण, पुराण अर्क उदित, अर्क मतलब सूर्य, ब्रिलियंट एज सन, श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद, ब्रिलियंट एज सन, वैसे केवल सूर्य जैसा ही प्रकाश नहीं, कोटि सूर्य सम प्रभा। जिन शास्त्रों से, ग्रंथों से प्राप्त होती है जिनको, वे भारतीय प्रकाश में जो तमसो मा ज्योतिर्ग, ज्योतिर्ग माया, अंधेरे में मत रहो, अज्ञान में मत रहो, ज्योतिर्ग माया, ज्योति की ओर, उस ज्योति के स्रोत, प्रकाश के स्रोत भगवान है, ज्योति श्याम रविर अंशुमान, भगवान ने कहा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तो ये शास्त्र गीता भागवत शास्त्र। करिति श्रवण, गीता भागवत करिति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। तो का म्हणे, तो का महाराज, तुकाराम महाराज की, उन्होंने कहा, क्या कहा, गीता भागवत करीति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। विठोबाचं चिंतन, विठोबा का चिंतन, स्मरण कैसे होगा, गीता भागवत करीति श्रवण, गीता भागवत फिर रामायण, जो सारा इतिहास भी है, ये हिस्ट्री भी है, भागवत पुराण महाभारत रामायण, ये सारे हिस्ट्रीज है, अरे संसार भर के, ब्रह्मांड भर के, अन्य ब्रह्मांडों के कई सारी घटनाएं, तो जब हम तो किसको पता है, राम प्रकट हुए, त्रेता युग में राम प्रकट हुए, नर नारायण ऋषि सत्य युग में प्रकट हुए, बद्रिकाश्रम धाम की, राम का प्राकट्य त्रेता युग का है, अयोध्या में प्रकट होकर फिर आगे रामेश्वर की ओर भी जो आगे बढ़े, और अब कुछ विशेष घटना घटती है रामेश्वर में भी, तो वे श्री राम त्रेता युग में प्रकट हुए। त्रेता युग तो मतलब बहुत वर्ष पूर्व की बात है, एक था राजा और एक थी रानी, ऐसी कहानी हम लोग सुनते रहते हैं, तो ये राजा रानी, और एक थे राजा, राजा राम, और उनकी थी रानी सीता महारानी की जय, तो वे हुए ते होन गेले, राम हुए कब, त्रेता युग में, तो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व की बात है, और ये बात पुरानी है, इसीलिए वो पुरानी हो गई, नहीं पुराणम अपि नवम, ये लीला कथा प्राचीन, अति प्राचीन होते हुए भी नवम नहीं है, फ्रेश, उसका स्वरूप ही ऐसा है, सच्चिदानंद है, शाश्वत है ये लीला कथा, क्योंकि लीला कथा तो कृष्ण की, राम की है, तो राम, राम शाश्वत है, तो राम की लीला भी शाश्वत, नाम की, नाम भी शाश्वत, और धाम भी शाश्वत, और फिर उनके भक्त भी जब हम बन जाते हैं, फाइनली हम उनके भक्त बन जाते, फिर हम भी अमर, अजर अमर, हम भी शाश्वत हो जाते हैं, और भी सदा के लिए हम उनके साथ, राम के साथ हम भी रह सकते हैं, जय श्री राम, ऐसा जन्म सिद्ध हक्का है, आणि तो मी काय मिळवणारच, तो ये ऐसा स्वातंत्र्य आता है, आया राम और फिर गया भी राम, तो मृत्यु मतलब पराजय है, डिफीट है, और ये बहुत बार हुआ, जननम मरणम इत्यादि इत्यादि, तो हम पुनः राम को ज्वाइन कर सकते हैं, कृष्ण को ज्वाइन कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, टू ज्वाइन द डांसिंग पार्टी ऑफ राधा एंड कृष्ण इज द गोल ऑफ लाइफ, अंततो गत्वा राधा कृष्ण के उस नृत्य में, लीला में प्रवेश करना, और फिर आनंद 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 ही आनंद, आनंद ही आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े सोही कड़े आनंदी आनंद गड़े। तो आनंद का धाम है सच्चिदानंद, भगवान के धाम में आनंद ही आनंद है। अवतीर्णे गौर चंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे, या भगवान यह भी प्रकट होते हैं इस जगत में, फिर अलग अलग धामों में फिर वहाँ वे पहुंच जाते हैं या प्रकट होते, जन्म लेते हैं, बाल लीला इत्यादि सब धाम में चलता रहता है। ये सब आनंद प्रदान करता है जीवों को, और फिर इसी में जो आनंद लूटने लगते हैं धीरे धीरे, इसका जब चस्का लगता है और इसी में हम आसक्त हो जाते हैं, ये स्वभाव बन जाता है, जो स्व का भाव है, हमारे आत्मा का भी भाव है, हमारा संबंध है भगवान के साथ, और ये भक्ति तो हमारे लिए नेचुरल है, ये माया हमारे लिए अननेचुरल, हमारे स्वभाव के विपरीत है माया। लेकिन आध्यात्मिक जीवन, कृष्ण भावना का जीवन जीव के लिए स्वाभाविक है। तो दस एक लाख वर्ष पूर्व श्री राम पृथ्वी पर रहे, तो 10 लाख का हिसाब कहां से, दिस ऑल साइंस, पुनः ये साइंस, ये सब निश्चित है। 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है, कितने वर्षों का, 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है। जब ब्रह्मा के एक दिन में ही 1,000 बार कलयुग आ जाता है, ये मनवंतर का, इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। द्वापर युग में 28वां जो द्वापर युग, इसमें श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, फिर वो द्वारका से पंढरपुर भी जाते हैं और फिर वहाँ खड़े हो जाते, 28 युगे, 28वां ये द्वापर युग पिछला रहा, अब कलयुग है। तो वह मनु के सब ये सारा हिसाब है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक एक मनु के एक काल में 72 महायुग होते, 72 युगस, 72 टाइम्स सत्ययुग, 72 टाइम्स फिर त्रेता, और फिर उतने ही द्वापर, उतने ही कलयुग जब आएंगे 72 बार, तो फिर एक मनु ओके यू आउट, फिर दूसरे मनु, फिर तो हमारे अब 8वें मनु चल रहे हैं इस समय, 7वें 8वें। तो वह कलयुग के दुगुना होता है, द्वापर युग और तिगुना होता है, त्रेता और चौगुना, 4 times as many years से सत्ययुग। तो कलयुग के तो कुछ 5,000 वर्ष बीते हैं और पूरा द्वापर युग बीच में, त्रेता और कली के बीच में पूरा द्वापर युग, तो 8,32,000 वर्षों का द्वापर युग बीच में है, त्रेता और कली के बीच में, तो 8,64,000 एंड देन 5,000 ईयर्स, और फिर कुछ त्रेता युग के भी वर्ष मिलाएंगे तो आसानी से 10,000 वर्ष पूर्व की ये लीला कथा बन जाती है। तो फिर लीला, अरे अयोध्या तो उसे भी और पुरानी है, लेकिन आराम से कह सकते हैं अयोध्या धाम की, अयोध्या कितनी प्राचीन नगरी है, हाउ मेनी ईयर्स, एक 10 लाख कम से कम 10 लाख वर्ष पुराना है ये अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी। मैं लॉस एंजलिस में था कुछ वर्ष पूर्व, कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नामक शहर, तो उस शहर का वो बाइसेंटेनियल 200 वर्ष पूरे हो रहे, 200 वर्षों की वर्षगांठ वे मना रहे थे। तो वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने किसी अमेरिकन लोकल से पूछा क्या व्हाट इज क्या क्या इवेंट है, व्हाट इज हैपनिंग। तो उन्होंने कहा कि यह हमारे लॉस एंजलिस का बर्थडे। हमने पूछा हाउ ओल्ड इज योर लॉस एंजलिस, कितना पुराना है। तो उन्होंने कहा वेरी वेरी ओल्ड। तो उसको हुआ उसको ओल्ड कह के उसको थोड़ा और ज्यादा ओल्ड करने का वो प्रयास कर रहे थे। वेरी ओल्ड हाउ ओल्ड इज इट, तुम ओल्ड करके इतना पुराना है। 200 years old और लॉस एंजलिस 200 years old, वी आर प्राउड 200 years old। तो हुआ 200 years एंड 10 लाख अयोध्या धाम की। तो हुआ ऐसे हम कली के चेले कहो, कली के जीव, डॉक्टर फ्रॉग्स प्रभुपाद कहा करते थे, डॉक्टर फ्रॉग मेढक, लेकिन वो बड़ी पदवी उसको प्राप्त हुई है या डॉक्टर फ्रॉग। तो एक मेढक आया पैसिफिक ओशन से, एक मेढक आया और कुएं में रहने वाले कूप मंडुक कुएं में रहने वाले मेढक से मिला। हेलो 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 सर, हाथ मिला रहे हैं, हाउ आर यू वगैरह सब हुआ। फिर कुएं में रहने वाला मेढक, ए कहाँ से आए, महासागर कितना है बड़ा महासागर तुम्हारा। तो महासागर में रहने वाले मेढक ने, मेरा महासागर तो बहुत बड़ा है। तो कुएं में रहने वाला मेढक कह रहा था कि कितना, मेरे कुएं से दुगुना है क्या। मैंने उसे बड़ा अच्छा, ओके 4 times चार दुगुना बड़ा है। तो स्वयं भी थोड़ा दिखा रहा था इतना बड़ा है, ऐसा फुला के दिखा रहा था। तो फुला के दिखाते दिखाते उसका विस्फोट ही हो गया है। तो हम बद्ध जीव कलो सत्वहरम पुंसाम, और फिर कलयुग ने जिन जीवों का सत्वहरम सत्व सात्विकता हर ली है, चांगुलपना गुलपना गुडनेस, माय गुडनेस गुडनेस अच्छाई सच्चाई को छीन लिया, हर लिया, सारे विश्व भर में ही हो रहा है। कली कुछ हिंदू का कली नहीं है, इंडियन कलियुग नो, कली तो सारे विश्व भर में कली है और कली का प्रभाव ही सर्वत्र है। यत्रा अधर्मा चतुर्विधा, जहाँ 4 प्रकार के धार्मिक कृत्य होते वहाँ कली है। तो कहा जहाँ मद्यपान, जहाँ मांस भक्षण, जहाँ अवैध स्त्री पुरुष संग, जहाँ जुआ इत्यादि इत्यादि अधार्मिक कृत्य जहाँ होते वहाँ वहाँ कली है, इज एवरीवेयर। तो ये शास्त्र हमें दृष्टि देते हैं, कुछ हमारे ज्ञान का कुछ ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान उत्पन्न तो नहीं होता, ज्ञान एग्जिस्ट पहले ज्ञान तो ज्ञान की सृष्टि नहीं होती, ज्ञान तो सत्य है, तो सत्य शाश्वत है। तो वह इसके श्रवण से, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जीव को तो कृष्ण प्रेम प्राप्त है, जीव को ज्ञान है, जीव को ये सब है, इज इक्विप्ड सारे गुणों से, शक्ति सामर्थ्य से, लेकिन वो ढका हुआ है, छिपा हुआ है कुछ आवरण माया का या तीन गुणों का, सत्व रज तम ने ढक लिया। लेकिन हम जब श्रवण करते हैं, सुनते हैं अध्ययन करते हैं, और किसी की मदद से अध्ययन करते हैं, फिर साधु आ गए, संत मंडली आई, आचार्य गण आए, साधु शास्त्र आचार्यों की मदद से हम ये वी बिकम स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी बनते हैं, गीता के स्टूडेंट्स ऑफ भगवद गीता, स्टूडेंट ऑफ भागवतम, आई एम स्टूडेंट ऑफ रामायण या चैतन्य चरितामृत, या स्टूडेंट ऑफ आत्मा का, परमात्मा का मैं विद्यार्थी हूँ, या आत्मा परमात्मा का विद्यार्जन और फिर विद्यावर्धन करने के लिए ये सब, ये सारी ये कथा उसी के अंतर्गत, पुनः जीव को स्मरण दिलाना है, खुद को स्मरण दिलाना है, कृष्ण का स्मरण, खुद का भी, हम कौन है। इट्स अ बिग रिमाइंडर। तो मैं कह रहा था कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, सत्य की सृष्टि नहीं, सत्य तो शाश्वत है। तो हम श्रवण करने से, साधु संग में, साधु संग सर्व शास्त्र को लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। तो ये साधु सर्व ज्ञान भक्ति पूर्ण सद्गुणी सदाचारी साधु, ये भी भगवान की व्यवस्था है, ताकि इनकी मदद से हम भगवान को जान सकते हैं। ऐसे भगवान ने ही व्यवस्था की है। तो धाम में भी जाते हैं तो वैसे तीर्थि कुर्वन्ती तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले तो साधु होते हैं। भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, युधिष्ठिर महाराज से कि आप ही तो स्वयं तीर्थ हो, तीर्थ यात्रा करके आए थे, मुझे भूल गया, क्या हुआ। आप स्वयं ही तो तीर्थ हो, भवत विधा भागवता, एक तो आप स्वयं भागवत हो और तीर्थ भूता, आप तीर्थ स्वरूप हो, स्वयं तीर्थ भूता स्वयं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्थेन गदाभृता। उस गदाधर को आप धारण करते हुए भगवान को अपने हृदय प्रांगण में आप जहाँ भी रहते हो जहाँ भी जाते हो यू आर मोबाइल तीर्थ तीर्थ साधु संत वे स्वयं तीर्थ होते हैं। और जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो इनकी इनका सानिध्य अनिवार्य है। हम धाम यात्रा की बात कर रहे हैं ये भी कहना चाहिए था कि या चैतन्य महाप्रभु भी कहे पांच अंग भक्ति के पांच अंग है। तो धाम में जब हम जाते हैं तो भक्ति के पांच अंगों की सेवा उनको हम अपनाते हैं। पांच अंग है और वे है भागवत श्रवण साधु संग भागवत श्रवण नाम कीर्तन धाम वास। धाम में वास तो करते ही है फिर और विग्रह की आराधना। तो धाम में करणीय कर्तव्य करणीय बात ये है साधु संग करे साधु संग और साधु संग भागवत वो कथा करेंगे भागवत कथा या राम कथा भागवत कथा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त ऐसे होते हैं भगवान ने कहा। तुरंत भगवान के संबंध में कोई टॉपिक खोलेंगे चर्चा शुरू होगी। मेरे भक्त ऐसे होते हैं बोधयन्तः परस्परं एक दूसरों को बोध करते हैं स्मरण दिलाते हैं। तो भागवत कथा नाम कीर्तन होगा धाम यात्रा में। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धाम में नाम कीर्तन और धाम में फिर वास धाम में निवास और धाम में वहाँ के धामी वहाँ के विग्रह वहाँ के लीला संपन्न किए हुए भगवान के विग्रह की आराधना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये पांच भक्ति के अंग भी धाम यात्रा में संपन्न होते हैं। और इसके संपन्न होने के लिए हमें साथ में साधु संत होने चाहिए। मैं पर्यटक टूरिस्ट के रूप में नहीं जा रहा एज अ टूरिस्ट। फिर कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़े कुछ दिखाई नहीं देगा। श्रवण से दिखाई देता है। कानों का बहुत उपयोग है धाम यात्रा में। वैसे आध्यात्मिक जगत में देखने के लिए हम आँखों से नहीं देखते कान से देखते कान से देखते कान से सुनना उसी से दर्शन होता है। दर्शन आँखों से नहीं कान से श्रवण से। फिर चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो श्रवण होता है उसी से फिर आई ऑपरेशन और चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु सई। तो गुरुजन हमें चक्षुदान देते हैं आँखों का दान आई ऑपरेशन कैंप। दिस वन इज ऑल्सो ये भागवत कथा भी इज आई ऑपरेशन कैंप। थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कुछ आशा है जो कुछ स्पष्ट नहीं था, धुंधला सा था, कुछ थोड़ा और अधिक 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 क्लियर होगा अधिक श्रवण से, अधिक श्रवण से, अधिक सत्संग से, अधिक कीर्तन से, अधिक अधिक तो ये सब मेरा रामेश्वर तो बात हम पहुंच ही जाएंगे तो हुआ। तो रामेश्वर या कुछ पार्श्व भूमि भूमिका की चर्चा होती रही। तो भगवान जो अयोध्या में प्रकट हुए रामनवमी के दिन, और फिर वो नवमी, वैसे जब मैं रामनवमी कहता हूँ तो मुझे ये बात भी याद आती है या मैं याद दिलाता हूँ, वो केवल रामनवमी ही नहीं थी, वो लक्ष्मण नवमी भी थी, वो भरत नवमी भी थी और शत्रुघ्न नवमी भी थी। ये चारों भ्राताश्री, ये चारों भगवान है, भगवान के स्वरूप है। तो इन सभी का प्राकट्य एक ही दिन हुआ, आगे विवाह भी एक ही दिन हुआ, और फिर इनकी जोड़ी भी है, राम लक्ष्मण इनका थोड़ा घनिष्ठ संबंध, और ये दोनों साथ में रहते हैं। तो और भरत और शत्रुघ्न साथ में रहते हैं। तो वह अयोध्या में प्रकट हुए ये चारों भगवान, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, जय श्री भरत, जय श्री शत्रुघ्न की। ओके, क्यों ना हम तो रामेश्वर, राम इज अ बिग टॉपिक, हाँ राम एक बहुत बड़ा वैसे व्यक्तित्व है। तो फिर तो रामेश्वर में, तो अयोध्या में जन्मे श्री राम, बक्सर नाम सुने, बक्सर बिहार में बक्सर, वहाँ विश्वामित्र उनको ले गए। जब राम 15 वर्ष के ही थे, राजीव लोचन, ये भी बात मुझे याद आती है, जब विश्वामित्र प्रस्ताव रखे, तुम मुझे चाहिए राम और लक्ष्मण। यहाँ क्या राम और लक्ष्मण, इनकी उम्र तभी उन षोडशीय वर्षीय, ये तो उन षोडशीय वर्ष, मैं 16 वर्ष भी नहीं, एक कम 15 साल के तो है, और ये वन में जाएंगे, नहीं 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 संभव नहीं, नहीं नहीं ना, मुझे ले चलिए, मैं सेना भेजता हूँ। राम लक्ष्मण को नहीं भेज सकता, और ये कैसे है, राजीव लोचन, मेरा राम तो राजीव लोचन, राजीव लोचनी मतलब सायंकाल सूर्यास्त होते ही जैसे कमल का पुष्प उसकी कली फिर मुरझा जाती है, बंद होता है। तो मेरे राम की आंखें भी ये कमल लोचनी, राजीव लोचनी, राम भी उसको भी नींद आती है। ऐसे सुकुमार बालक को आप वन में, और वो भी ये यज्ञ के दिन या युग, तो यज्ञ की यज्ञशाला की रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो हुआ कृते ध्यायतो विष्णुम। सत्ययुग में तो भगवान का ध्यान, वो भी ध्यान कर रहे थे, भगवान ने ध्यान करके दिखाया, तपस्या करके दिखाई। बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि ध्यान, योगी भी ध्यान गम्यम, और योगियों को भी सिखाए ध्यान, उसकी रक्षा किए। तो वह त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ, यज्ञ से भगवत प्राप्ति, स्वाहा स्वाहा। यज्ञ पुरुष भगवान, उनकी आराधना है। तो उन यज्ञों में कई सारे विघ्न आ रहे थे, तो विश्वामित्र चाहते थे राम लक्ष्मण मुझे चाहिए, तो ले गए बक्सर उनका। तो कभी अयोध्या को कभी नहीं छोड़ा था, अयोध्या नगरी में ही रहे हुए ये राम और लक्ष्मण। वह ताड़का का वध का श्री गणेश शुरू होता, स्वाहा, किसका ताड़का स्वाहा, फिर इसका स्वाहा। जैसे श्री कृष्ण भी पूतना से शुरुआत किए, पहला वध और राक्षसी का, जैसे कृष्ण किए तो राम भी एक राक्षसी के वध से ही शुरुआत किए। फिर वहां से जनकपुर, हरधनु, उसको बाएं हाथ का खेल उन्होंने उठाया और पत्यंचा चढ़ाया, उसके टुकड़े हो गए। और सीता स्वयंवर में सीता को जीता श्री राम ने, और फिर ये भी एक ही मंडप में, लाइक अ मैस मैरिज, चारों भ्राताओं के विवाह हुए। और फिर श्री राम पुनः अयोध्या लौटते हैं। यहाँ तक बाल कांड, फिर अयोध्या कांड शुरू होता है, जिसमें अधिकतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां, और फिर वो तो हुआ नहीं, वो सभी तैयारी थी। दशरथ महाराज कुछ वृद्धावस्था आ रही थी, आईने में देखा कि कुछ ग्रे हेयर, कुछ सफेद बाल देखे, तो टाइम फॉर रिटायरमेंट, या वानप्रस्थ। तो अपने राम को राजा बनाने की तैयारी, लेकिन सब सब उल्टा पलटा हुआ। मंथरा और फिर कैकेयी और दशरथ ने दिए हुए वरदान, और ताकि अपने पिता श्री अपने वचन का पालन कर सके, तो मैं यस आई एम रेडी, वन में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो फिर हम तो बड़े ऐसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ में सारे भाव और रस, बड़ा रसमय रामायण की कथा है। भावों का खेल है। फिर आगे श्रृंगार रस भी है या हास्य रस भी है हनुमान की कुछ लीला में या सीता के वियोग में राम का विप्रलंब, कुछ वियोग में श्रृंगार रस के भाव का भी उदित होना, कई सारे रसों से भरा हुआ ये रसीला सरस ग्रंथ। फिर राम और सीता भी तैयार होती है, नहीं नहीं टू गो विथ यू। तो उस समय तो सारा नगर ही, नगर मतलब वहाँ के वास्तुएं या इमारतें नहीं, वैसे वृक्ष भी सोच रहे हम भी मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता, जैसे और लोग पीछे पीछे जा ही रहे हैं लेकिन हम बेचारे, हम तो स्थावर है, हम तो हिल भी नहीं सकते। ओह तो राम का वियोग अब उनको सहन नहीं हो रहा था। तो राम तो आगे बढ़ते हैं और रात्रि का पड़ाव, और वहां तक सब अयोध्यावासी गए थे, पीछा नहीं छोड़ा, किंतु जो सारे जब सोए थे तो हुआ राम तो नहीं सोए थे, सुमंत्र को जगाए गेट अप, और सीता और लक्ष्मण के साथ को आगे बढ़ो, तो रथ को आगे बढ़ाए। प्रातः काल में जब अयोध्यावासी जग जाते हैं तो देखते हैं तो वेयर इज राम, राम नहीं है। लेकिन उन्होंने उस रथ के पहियों के निशाने देखी तो बड़े युक्ति पूर्वक राम ने उस रथ को कुछ दूरी तक अयोध्या की दिशा में ले जाने के लिए कहा था। तो अयोध्या वासियों ने सोचा आओ राम लौट गए अयोध्या, चलो हम भी लौटते हैं, ऐसा सोच के बेचारे लौटे। लेकिन राम तो और डाइवर्जन लेके आगे बढ़े थे, गंगा के तट पर श्रृंगेर श्रृंगेर पूर्व से। तो रात वही बिताई, वहां के राजा आए थे, आइए हमारे आप अतिथि हो, अतिथि देवो भव, आइए हमारे साथ रहिए, आवास निवास की और हमें अतिथि की आतिथ्य को निभाने, हमारा फर्ज निभाने दो। लेकिन राम तैयार नहीं हुए, राम वही वन में ही कुछ पत्तों को बिछाए, उसी पर लेटे, और ऐसे ही 14 वर्ष वे रहने वाले थे। केवल वन में ही नहीं रहना है, वनवासी बन के रहना है, वनवासियों जैसा रहना है, केवल वन में नहीं रहना है। ओ राम वेयर आर यू नाउ, सम 7-star होटल सच एंड सच होटल, अब वन में ही हूं मैं, लेकिन आई एम इन होटल, ऐसी बात नहीं थी, आई नो आई एम वन में तो हूं, आई एम फॉरेस्ट, आई एम द फॉरेस्ट, वन में हूं नहीं, केवल राम वन में ही नहीं वनवासी जैसे पर्ण कुटियों में ही रहे और पकाया हुआ भोजन नहीं खाए, कंदमूल फल ही खाए, और 14 वर्ष किसी टेलर के पास नहीं पहुंचे वस्त्र सिलाने के लिए। तो फिर केवट उनको दूसरे दिन ले जाता है, गंगा को पार किया, वहाँ भी वो केवट के साथ का जो संवाद मेरा मेरा और राम का एक ही पेशा है, वी आर सेम बिजनेस, ऐसा कह रहे थे। तो लक्ष्मण ने ये बात सुनी, क्या 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 कहे, तुम्हारा और तुम्हारा पेशा, योर बिजनेस, ये जो भी करते हो, राम जैसा एक, क्या कह रहे हो, गला पकड़े तो सुनाए। जैसे राम राम बेड़ा पार करते हैं, ये भावसागर से बेड़ा पार कराते हैं जीवों का। तो केवट ने, मैं भी लोगों को नदी के पार, गंगा के पार लगाता हूँ, ऐसे समझाए। सीताराम लक्ष्मण लक्ष्मण आगे रहते थे, गार्ड, अंग रक्षक, क्या जैसी आवश्यकता आगे भी रहते थे। ऐसे आगे रामटेक में हमें पता चला, नागपुर के पास राम आए थे तो वहां लक्ष्मण का मंदिर आगे है और पीछे है सीताराम का मंदिर। तो उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण आगे आगे रहा करते थे, इसीलिए यहाँ राम का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर आगे और सीताराम का मंदिर पीछे है रामटेक में। शायद हम उन्हें पहुंचेंगे रामटेक भी। तो वह भरद्वाज आश्रम पर पहुंच जाते हैं, प्रयाग में। उनको प्रणाम इत्यादि इत्यादि, राम प्रणाम करते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, ऋषि मुनियों का बड़ा सम्मान सत्कार किया करते थे। मैं तो क्षत्रिय हूँ, ये तो ब्राह्मण है, ये तो ये ऋषि मुनि है, मेरे लिए वे आराध्य है, पूजनीय है, ये भाव श्री राम का। तो हुआ तो आगे बढ़ो, राम को तो आगे जाना ही था। उन्होंने संकेत किया, ओ जो देख रहे हो वही से दिखता था उन दिनों में, कहते हैं चित्रकूट का जो वहां के पर्वत के शिखर प्रयाग से, वहां जाना, वहां आप रह सकते हो। तो पुनः आगे बढ़े राम लक्ष्मण सीता और फिर उनको इस समय जमुना को पार किया, प्रयाग में गंगा फिर जमुना और सरस्वती का संगम है। तो गंगा को पार किए थे श्री राम, तो फिर गंगा और जमुना के बीच में आ गए, जहाँ प्रयाग की नगरी भी है, और संगम पर ही भरद्वाज मुनि का आश्रम। तो अब आगे बढ़ने के लिए जमुना को पार किए, तो आगे वाल्मीकि मुनि का आश्रम क्या मुलाकात होती है। राम पूछते हैं, ओ मुनि श्री, हम कहाँ रह सकते हैं। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, पहले आप ये बताइए हमें प्रभु कि आप कहाँ नहीं रहते हो। आप ये बात बताओगे आप कहाँ नहीं रहते हो तो फिर हम बताएंगे, फिर आप जहां नहीं रहते हो वहां रहो, आप तो सर्वत्र रहते हो, आपका सर्वत्र निवास है या निवास हो सकता है, किंतु आपने पूछा ही मुझे कि आप कहाँ रह सकते हो, तो मेरा एक विशेष निवेदन है, प्रभु आप रहिए, आपके भक्तों के हृदय प्रांगण में आप जरूर रहिएगा। तो सीताराम लक्ष्मण आगे बढ़कर चित्रकूट में पर्णकुटी बना के वहां रहने लगे। तो ये सब कुछ धाम, छोटे मोटे धाम जहां जहां स्टॉप ओवर्स राम रुके या रहे। तो यही पर अभी इतने में अयोध्या में भरत लौटे और फिर पिताश्री भी नहीं रहे और भरत स्वयं राजा संभव ही नहीं, ना यहाँ के राजा तो राम ही हो सकते हैं, और अपनी माँ को ही बहुत कुछ खरी खोटी वो सुनाए। और फिर वैसे भरत का ही प्रस्ताव था, राम ही बनेंगे राजा, चलो हम जाते हैं, राम इस वक्त जहां भी होंगे हम ढूंढ के निकालेंगे, राम को ले आएंगे, राम का ही राज्याभिषेक होगा, यहाँ के बनेंगे राजा राम ही। तो वह इस संकल्प के साथ भरत और शत्रुघ्न और रानिया और वशिष्ठ जी और कई मंत्रीगण, कुछ पुरोहित भी, कुछ अंगरक्षक, कुछ सैन्य भी लेके वे राम को खोजते 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 पहुंच जाते हैं, चित्रकूट पहुंचे। तो वहाँ का उनका मिलन, चित्रकूट में वो स्थल भी है जहाँ राम लक्ष्मण और सीता का भी मिलन, अयोध्या से आए हुए ये सभी वरिष्ठ मातोश्री माताएं थी और गुरुजन पुरोहित एक दूसरों से गले लगाए मिले हैं। तो जहाँ वे मिले, जहाँ वे खड़े थे, तो वहाँ वो पहाड़ का पत्थर भी पिघल गया है, उस पत्थरों में भी राम लक्ष्मण सीता और औरों के चरणों के चिन्ह बने। वहां की जो भावनाएं जो व्यक्त हो रही थी, वो सारी दिव्य भावना का आदान प्रदान हो रहा था, वो पाषाण भी पिघल गया और ने प्रस्ताव तो उसके ने क्या 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 कहे क्या न कहे। उसे लक्ष्मण ने सोचा था, ए तैयार हो जाओ, राम से कहे, किसके लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, किसके साथ, भरत के साथ, या देखो आर्मी आ रही ना हमारे साथ लड़ने के लिए, भरत सेना लेके आ रहा है, तैयार हो जाए। Let's get ready. राम ने तो समझाया बुझाया ये संभव नहीं है, भरत और हमारे साथ युद्ध खेलेगा संभव नहीं है। लक्ष्मण में ऐसा कुछ भाव उत्पन्न होते रहते तो जो तो प्रस्ताव रखा कि आप ही चलिए और नहीं नहीं सर मैं नहीं लौट सकता, मैं जो एक वचनी राम कैसे राम एक वचनी राम एक पत्नी राम भी और एक एक बानी राम एक बानी एक पत्नी एक वचनी राम। तो वह फिर अंत तो गत्वा राम की पादुका राम नहीं तो सही राम की पादुका ही सही जो राम से अभिन्न है। ने सिर पर धारण की और फिर वादा भी किया आपको ठीक या इवन बिफोर पहले ही 14 वर्ष की अवधि पूरी होने के पहले ही आपको लौटना होगा या पहुंचना होगा अयोध्या। वेल आप देरी से पहुंचोगे तो वेल नहीं पहुंचने से अच्छा है, या पहुंच जाओगे तो फिर अब मुझे तो आप जीवित नहीं पाओगे, आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो आपको समय पर 14 वर्ष की अवधि के पहले पहुंचना। तो वह ये लौटते हैं और फिर अयोध्या में भरत लौटे तो इन भरत ने कभी अयोध्या में प्रवेश नहीं किया, 14 साल प्रवेश नहीं किया। और राम जैसे वन में वनवासी जैसे रह रहे थे वैसे ही रहे भरत। नंदीग्राम करके अयोध्या के बाहर ही रहे, राम के पादुकाओं की स्थापना की और यहाँ के राजा राम ही है ऐसे मान्यता के साथ वे समय बिता रहे थे। तो यहाँ चित्रकूट में राम और अधिक समय तो वनवास का चित्रकूट में ही उन्होंने राम लक्ष्मण सीता ने बिताया, अधिक समय वनवास का चित्रकूट में। तो हुआ अंत के कुछ वर्ष अन्य स्थानों पर, तो वहां से आगे बढ़ते हैं चित्रकूट से और फिर मध्य भारत की ओर पहुंच जाते हैं। रामटेक नाम का धाम है, रामटेक धाम या रामगिरी भी कहते हैं, नागपुर से कुछ दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, हम कई बार वहां भी गए। वहां शरभंग ऋषि ने भी कई सारी लीलाए घटनाक्रम, शरभंग ऋषि उन्हें स्वयं अपनी चिता बनाई राम की उपस्थिति में ही, उसमें अग्नि में प्रवेश किए और शरीर को त्यागे, एक दिव्य स्वरूप को प्राप्त किए और वे भगवत धाम लौटे राम की उपस्थिति में ही। सुतीक्ष्ण नामक ऋषि के आश्रम पर राम लक्ष्मण सीता जाते हैं, रास्ते में देख रहे थे वहां का दृश्य, कई सारे हड्डिया स्केलेटन्स एंड स्कल्स सर्वत्र फैले हुए थे, कुछ खून भी बह रहा था, कुछ चमड़ी भी है, अस्त व्यस्त सर्वत्र। पूछने पर, या वैसे इस आश्रम में तो सभी आ गए, जो बचे हुए शेष ऋषि मुनि आकर राम से मिले और रिपोर्टिंग हुआ, आपने जो देखा ये ऋषि मुनियों का हाल, यहाँ के या आने वाले राक्षसों ने ये हाल किया ऋषि मुनियों का, तो राम ने देखा भी था वो दृश्य और सुना भी, और ऋषि मुनि विशेष निवेदन कर, पाही माम रक्षा माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे
कृष्ण 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 हे
राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा
राघव राम राघव राम राघव रक्षमा
राम राघव राम राघव रक्षमा केशव कृष्ण केशव पाही मा
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मा
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मा
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव
राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा
राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा
राम राघव राम राघव रक्षमा Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Hare Krishna Krishna Bhagwan se prarthana kijiye pray for the Lord pray pray to the Lord Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare
Hare Rama, Hare Rama 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 Raghava Rama Raghava Rakshama
Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama
Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahima Krishna 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 Krishna
Krishna
Krishna
चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय रामेश्वर धाम की जय। तो पुनः एक बार मैं आपको बताऊं कि ये कथा की अंतिम जय ध्वनि नहीं थी, क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष अतिथि उपस्थित हुए हैं, उनमें से प्रमुख तौर से हमारे इस्कॉन पूना के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। राधेश्याम प्रभु जी से मैं प्रार्थना करता हूँ वे यहाँ पर मंच पर आए। श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी यहाँ पर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे, उसके पश्चात इस्कॉन अहमदनगर के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीनारायण प्रभु जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे एक दो मिनट के लिए आपको कुछ सुंदर कथा और उसके माध्यम से एक दिव्य संदेश सुनाएंगे और एक महत्वपूर्ण एक दो चार सूचनाएं होंगी, उसके पश्चात पुनः महाराज जी इस कथा को पुनः एक बार आरंभ करेंगे। तो राधेश्याम प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस ग्रेष राधेश्याम प्रभु की जय। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप आए यहाँ पे अपने मनोगत को व्यक्त करें।
हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हम पुनावासियों की परम सौभाग्य है कि इस पुणे शहर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ये 7 दिन का कथा पिछले 14 साल से करते आए हैं। हर साल श्रीमद् भागवत में ऐसे एक श्लोक बताते हैं परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को, सान्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णु रिवसुरे तराह। वो बताते हैं कि अगर किसी कमरे में अंधकार हो, दीप जलाने से लाइट लगाने से वो अंधकार मिट जाता है। इस तरह जिधर विष्णु स्वयं उपस्थित हैं उधर असुरगण उपस्थित नहीं हो सकते हैं। जिधर भगवान के हरिनाम उपस्थित है उधर पिशाच भूत प्रेत उपस्थित नहीं हो सकते। इसलिए वो बताते हैं इस तरह सुखदेव गोस्वामी को, हे सुखदेव गोस्वामी जी, अभी आपकी उपस्थिति में हम लोग भागवत कथा सुनने के लिए हमें मौका मिला है, ये हमारी परम सौभाग्य है। ऐसे बताते हैं आपके सान्निध्य में आने से महापातक से पातक पाप भी मिट जाता है और हमें पुण्य प्राप्त होता है और भगवान की कथा श्रवण करने की कैंकर्य हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह के भागवत में बताया गया है कि तीर्थ स्थल जो होते हैं, जो ये सात दिन के कथा का बेसिक विषय है। मैंने सुना कि महाराज पहले दिन में आया था प्रभुपाद जी के संबंध में, और गोल्डन जुबली जो अगले साल मनाने जा रहे हैं इस्कॉन के 50वां साल, उसके संबंध में महाराज जी बता रहे थे पहले दिन। तो दूसरे दिन से लेकर सातवां दिन तक महाराज एक एक दिन एक एक धाम के बारे में हमें सुना रहे हैं। तो धामों की महिमा क्या है, धाम क्यों पवित्र हो जाते हैं, उसका कारण क्या है, कोई पूछ सकता है। अभी धाम में नदियां होती हैं, पवित्र नदियां, जैसे गंगा यमुना कावेरी ऐसे। लेकिन नदियों में भी अनेक पापी लोग जाकर अपने पाप डाल देते हैं, तो नदियां काले काले हो जाते हैं। तो धामों को क्यों हम पवित्र मानते हैं, तो वो भागवत में इसका आंसर दिया है। भागवत में बताया है धाम इसलिए पवित्र है क्योंकि उस धाम में संत महात्मा रहते हैं। संत महात्मा इसलिए पवित्र हैं क्योंकि उनके मुखारविंदों में हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन होता है, और वो वक्ता बनकर कथा बताते हैं दूसरों को। इस तरह भगवान के नाम, भगवान के यश, इसके गुणगान करते हुए जो संत महात्मा रहते हैं, वो धाम में आने वाले जाने वाले लोगों को सबको पवित्र करा देते हैं। और ऐसे संत महात्मा जब नदियों में नहाते हैं, तभी नदियों में पड़ा हुआ जो पाप है वो भी मिट जाता है ऐसे। इसलिए महाराज अभी सात दिन में हमको अनेक धामों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन महाराज जी खुद वृंदावन धाम में पिछले 25 साल से भी ज़्यादा हर साल एक महीने के लिए एक ब्रजमंडल परिक्रमा यात्रा करते हैं। पूरे महीने कार्तिक के महीने महाराज वृंदावन में रहकर हजारों भक्तों को, भक्तगणों को साथ में लेकर वृंदावन के अनेक भगवान कृष्ण की लीला चेष्टाओं को समझाते हुए ऐसे यात्रा करते हैं बहुत सालों से। अभी अभी महाराज ने एक किताब भी निकाला है ब्रजमंडल परिक्रमा करके ऐसे। हाँ इधर ही है वो किताब, ये किताब निकाला है महाराज ने, तो ये इंटरनेशनली जगत प्रसिद्ध किताब है। तो इस तरह महाराज का, महाराज बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। 1971 में जुड़े इस्कॉन में प्रभुपाद जी को मिले, उस समय से लेकर अभी लगभग 45 साल हो गया। अभी इतने सालों में महाराज जी इस तरह अलग अलग तीर्थ स्थलों में भक्तों के साथ जाकर भगवान की लीला कथाओं को खुद पढ़कर रमा कर लोगों को आनंद दिया है महाराज जी सालों साल। तो इधर पुणे शहर में आकर हम लोगों को भी इस तरह भगवान की भक्ति के आनंद में डूबा रहे हैं। तो आज राम की कथा बता रहे हैं महाराज जी, भगवान रामचंद्र की। देखिए शास्त्र बताते हैं कि भगवान को समझने में गुह्य ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है और गुह्यतम ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्या है, ये समझना कि भगवान का एक सुंदर आकार है, रूप है, भगवान निराकार नहीं है। क्योंकि बल्ब होता है उसका आकार है, लेकिन बल्ब से निकलने वाला रोशनी वो निराकार है। इस तरह भगवान का एक सुंदर स्वरूप है, लेकिन भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति जो है वो निराकार है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमेम तम ये विद्वान अति मृत्युमेति नान्य पंता विद्यते अयनाय। इस तरह श्रुति मंत्रों में बताया गया है भगवान की कांति है आदित्य वर्ण ऐसे। तो ये समझना, और महाविष्णु कैसे अनेक ब्रह्मांडों को अपने शरीर से सृष्टि करते हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर बसकर कैसे वो गर्भदक्षा विष्णु बनते हैं, और अणु अणु में अंतर्यामी कैसे बनते हैं भगवान परमात्मा के रूप में, इसके बारे में समझना गुह्य ज्ञान है। इससे भी बढ़कर गुह्यतर ज्ञान है भगवान के, जैसे मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह इत्यादि भगवान के लीला अवतारों के बारे में कथा सुनना। तो वो वही भक्तों को बताया जाता है जो भगवान के भक्ति में थोड़े आगे बढ़े हैं, और उससे भी गुह्यतम ज्ञान समझा जाता है जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान रामचंद्र और भगवान विष्णु इनके व्यक्तिगत लीलाएं जो होते हैं, खास करके जो भगवान अपने मनुष्य जैसे लीलाएं करते हैं। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रियाः, ऐसे पद्म पुराण में भगवान बताते हैं, मेरे भक्तों के आनंद के लिए मैं मनुष्य जैसे मैं चेष्टा करता हूँ, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं दिव्य हूँ, परम सत्य हूँ, भगवान हूँ। लेकिन मैं भी मनुष्य जैसे बर्ताव करता हूँ, इस तरह भगवान बताते हैं, क्योंकि उसको देख कर मनुष्यों के हृदय में मेरे लिए प्रेम जागृत होता है। जैसे आज भगवान रामचंद्र की संबंध में महाराज जी बहुत बढ़िया बता रहे थे, सुंदर अभी भरत मिलाप वगैरह बता रहे थे महाराज जी। तो भगवान रामचंद्र जी इतने अति दयालु परम कृपालु हैं, हम उनके लीलाओं को सुनकर हमारे हृदय में उनके लिए एक प्रेम उमड़ पड़ेगा इस तरह के कथाओं को सुनकर। मैंने हाल ही में अभी भी सुना, मैंने भगवान रामचंद्र जब वापस लौटे अयोध्या, एक बार उनको इनविटेशन आया था मिथिला से कि आप जरूर आइए मिथिला आकर एक दो हफ्ते के लिए ठहरिए। तभी हनुमान जाकर बोले भगवान रामचंद्र के कानों में, भगवान सब बंदर भी आपके साथ आना चाहते हैं मिथिला। लेकिन लक्ष्मण ने बोला कि लक्ष्मण हमेशा देखते थे कि बंदरों का थोड़ा सदाचार उतना अच्छा मालूम नहीं उनको। जंगल में भी जब रामचंद्र प्रभु रामचंद्र नीचे बैठते थे पेड़ के नीचे, बंदर सब पेड़ के ऊपर बैठते थे, तो हनुमान उनको देखते थे, क्या तुमको कुछ एटिकेट मालूम नहीं, तुम लोग ऊपर बैठे हो भगवान नीचे बैठे, तो सब उतर जाते थे नीचे सारी सारी बोल के। तो इसलिए लक्ष्मण को लगा कि इनको लेकर कैसे हम जाए मिथिला में, तो भगवान रामचंद्र ने प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया। लेकिन 3 महीने के बाद वापस इन्विटेशन आ गया उनको, जनक महाराज ने बोला कि नहीं नहीं आप जिनको भी लेके आना सबको लेके आइए आप। ठीक है, भगवान रामचंद्र ने इन्विटेशन दिया कि ठीक है बंदरों को भी लेके जाते हैं, सबको लेके गए वो। लेकिन जाने के बाद मिथिला नगर में जनक महाराज उनके एक मिनिस्टर को लगाया बंदरों की देखभाल करने के लिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था सब किया उन्होंने। तो मिनिस्टर ने बोला कि देखो आप लोग अंदर रहो, बिल्डिंग के अंदर बाहर मत आओ, शांति से रहो, इधर उधर भाग दौड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, 1 बजे आपको प्रसाद मिलेगा, बीच में नहीं माने का। सब बंदर हाँ हाँ बोले। लेकिन दूसरे दिन एक बंदर ने 12 बजे घंटी बजा दिया, तो सब बंदर प्लेट लेकर आ गए भाग कर। सब ने पूछा है किसने बजाया, सब लोग एक दूसरे को पूछ रहा है, जिसने बजाया वो भी पूछ रहा है दूसरों को ऐसे। तो लक्ष्मण इसको देख रहे थे क्या चल रहा है बंदरों का। तो काते समय एक बंदर ने एक आम लिया, ऐसे किया तो कुटली ऊपर उड़ने लगा। तो बंदर बोला कि ये लक्ष्मण जी के कारण हमारी कूदने का आदत हम भूल गए। अभी वो बोला कि कुटली इतना ऊपर भागता है, मैं और भी इसके ऊपर कूदूंगा अभी। और वो जब कूद पड़ा सब बंदर कूदने लगे। तो भगवान रामचंद्र प्रभु रामचंद्र हंस रहे थे, तो लक्ष्मण को बहुत शर्म आया इसको देखकर, बोला कि इसलिए मैंने बोला इनको साथ में नहीं लेके आने का सबको। तो इस तरह प्रभु रामचंद्र इतने बड़े कृपालु हैं, वो बंदरों के साथ मैत्री करते हैं, जटायु के साथ मैत्री करते हैं। जैसे शबरी होती है बूढ़ी स्त्री जिनके हृदय में इतने बड़ी भक्ति भावना है उनके साथ मैत्री करते हैं, गुह जो निषाढ़ है उनके साथ मैत्री करते हैं भगवान, और राक्षस परिवार से जन्मे विभीषण जो भगवान प्रभु रामचंद्र के भक्त थे उनके साथ मैत्री करते हैं भगवान। तो भगवान के हृदय में जो दयालु भावना है वो दीन बंधु कैसे हैं, इस तरह की लीलाओं को सुनकर हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत होता है। और यही कथा का लक्ष्य है कि हम प्रभु के दास हैं और जन्म जन्म से हम भूल कर इस दुनिया में भटक रहे हैं। इस तरह की कथाओं को सुनकर प्रभु की याद दिलाना हमको और उनकी पदकमलों की सेवा में हमें जोड़ना, यही इस तरह के भागवत कथा का लक्ष्य है। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज इस्कान के पदयात्रा वर्ल्ड मिनिस्टर हैं, सारे दुनिया के 120 कंट्रीज इंटरनेशनली उसमें पदयात्रा चल रहा है, और हरिनाम की प्रचार प्रसार महाराज ने शुरू कर दिया है, और जोरदार सारे दुनिया में भगवान की हरिनाम गूंज रहा है महाराज की कृपा से। तो ये प्रभुपाद जी की आदेश थी इनको कि आप इस तरह शहर शहर में गांव गांव में आप फैलाइए भगवान के नाम को, यही प्रभुपाद ने आदेश दी थी इनको, और महाराज बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी आने वाले साल जो 50वां साल है इस्कान के लिए, और महाराज जी की अनेक योजनाएं हैं, और आप लोग ये 7 दिन का कार्यक्रम अटेंड करिए, उसके बाद इस्कान पूना जो कैंप में एक छोटा मंदिर है, और NVCC न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर जो कातरज कोंडवा में है, बड़ा मंदिर है उधर, आप जुड़कर रहिए और आपको विविध कार्यक्रमों का लाभ आपको प्राप्त होगा। और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज पूना में भी 4-5 बार आते हैं साल में, आप लोग ज़रूर उनकी कीर्तन कथा सुनकर उसमें शुद्ध बुद्ध खो बैठे होंगे, और आप लोग मंदिर में रेगुलर आते रहेंगे तो आपको महाराज की सानिध्यता और संग रेगुलर मिलता रहेगा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा,
हरि बोल।
धन्यवाद राधेश्याम प्रभु। हरे कृष्णा। भगवंत एवढे कृपाल आहेत, भगवान इतने कृपाल है, इतने दयालु है कि उनके बारे में जितना भी बोले उतना कम है। महाराज जी हमें सुना रहे, भगवान भगवान के धाम से, गोलोक धाम से अगर भोग स्वीकारना है तो जगन्नाथपुरी आते हैं, और भोग स्वीकारने के पश्चात थोड़ा सा पाचन के लिए वृंदावन जाकर गोपियों के साथ लीला करते हैं, थोड़ा नृत्य करते हैं, उसके बाद श्रीरंगम में जाकर थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद बालाजी जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा भक्तों के साथ व्यापार करते हैं, और लास्ट में पूरी तरह से कृपा देने के लिए पंढरपुर आते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं। और पंढरपुर में इतना विशेष चीज़ है कि भगवान को आलिंगन करने का या चरणों का दर्शन पूरा विश्व में कहाँ पर भी नहीं है, ऐसा पंढरपुर धाम है। मुझे याद है कि जयपुर में एक बार एक भक्त भगवान के लिए हर रोज एक माला बनाता था, फूल का माला, लेकिन ये दुनिया है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है। एक दिन ऐसा स्थिति आ गया कि उनके पास कुछ पैसा नहीं था भगवान को माला अर्पण करने के लिए, तो उन्होंने तुरंत एक साहूकार के पास गया, अपना घर लिख के दिया, लेकिन माला देता रहा, भगवान को अर्पण करता रहा। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई, लास्ट माला अर्पण की, उसके बाद उनके पास कुछ पैसा नहीं था, तो लास्ट माला अर्पण की, वो जाकर अपने घर में सो गया, लेकिन भगवान सोए नहीं। सुबह सुबह जब भी राजा दर्शन के लिए गया था तो उन्होंने देखा कि भगवान के जो सर है थोड़ा सा नीचे, तो राजा ने पूछा, भगवान आप इतने झुके क्यों है नीचे? तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, हे राजा, ये मेरे एक भक्त है, उनके पास पूरा पैसा खत्म करके ये लास्ट वाला मेरे गले में माला अर्पण की है, तो आप जाओ और उनका घर या जो भी है पूरा कर लो। तो हम देखते हैं कि भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु है। भगवद गीता में बोलते, नेहा विक्रम मनासोस्ते प्रत्यवायन विद्धते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान के प्रति अगर थोड़ा भी कुछ कार्य करता है व्यक्ति तो भगवान बहुत बड़े मदद करते हैं। द्रौपदी ने केवल इतना ही कपड़ा भगवान को हाथ को लगाया था, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा कपड़ा दे दिया। तो पंढरपुर महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में प्रपात घाट हो रहा है, और हमारी सेवा के लिए एक्चुअली भगवान को जरूरत नहीं है, सहस्त्र लक्ष्मी उनके सेवा में हाजिर है, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए वो सेवा करना है। तो वहाँ पर घाट हो रहा है, तो हम इतना ही विनंती करते हैं, आपका सेवा का मौका देते हैं। तो वहाँ पर 60% घाट पूरा हो चुका है, अभी बाकी है, तो सेवा का मौका है, बाहर स्टॉल खड़ा है, तो स्टॉल में जाकर आप वो सेवा का मौका ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राधेश्याम प्रभु एवं लक्ष्मी नारायण प्रभु। प्रभुपाद घाट जैसे हम 2-3 दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि इस वर्ष इस्कॉन को स्थापित हुए, इस्कॉन संस्था को, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लगभग 50 वर्ष संपन्न हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं। तो इस वर्ष महाराज जी की अपेक्षा है कि ये प्रभुपाद घाट, जिसका नाम ही प्रभुपाद घाट रखा गया है, प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित किया जाए। इस वर्ष तक 60% कार्य संपन्न हो चुका है, 40% बाकी है। कोई व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार दान देना चाहता है तो बाहर स्टॉल लगा हुआ है। ये जो प्रभुपाद घाट है, इस प्रभुपाद घाट पर चंद्रभागा देवी का मंदिर होगा, वहाँ पर आरती होगी, जैसे गंगा जी की आरती होती है हरिद्वार में या बनारस में। यहाँ पर माताओं के लिए वस्त्र परिधान बदलने के लिए सुविधा होगी, दीपमाल होंगे, तोरण होंगे, चंद्रभागा जी की मूर्ति विग्रह होंगे। तो कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि वहां पर दान देना चाहता है, कोई व्यक्ति 500 पायरी यानी स्टेप्स दान देता है तो केवल और केवल 5 लाख रुपए उसकी राशि है, 300 पायरियों के लिए स्टेप्स के लिए 3 लाख रुपए, या कोई 50-51 पायरी भी दान देता है तो हमारे भक्तों ने एक बहुत विशेष सुविधा उनके लिए यहाँ पर रखी है। जो कोई 50 के ऊपर पायरियों का दान करता है, मतलब लगभग 50,000, वे उनको एक कार्ड दिया जाएगा, इस्कॉन की ओर से लाइफ मेंबरशिप कार्ड होता है, आजीवन वे सदस्यता स्वीकार करते हैं। इनकी बहुत सारी सुविधा हैं जो माहिती आपको स्टॉल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर महाराज जी उपस्थित हुए हैं, तो महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कथा अभी आगे शुरू रखें और भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कथा के पश्चात आपको निवेदन की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव और भक्त वृंद और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हुआ मैं थोड़ा गियर को बदलना होगा। रामेश्वर पहुंचे भी नहीं हम। तो रामटेक में ही अभी संक्षिप्त यथासंभव। अगस्त मुनि हरि 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 और श्री राधे हरि हरि। अगस्त मुनि ने ही उनको, या वैसे राम ने पूछा था, फिर हम कहा अब कहा रह सकते हैं, तो अगस्त मुनि ने गोदावरी के तट पर या पंचवटी वहाँ के लिए संकेत किया। दंडकारण्य में अब राम लक्ष्मण सीता पहुंचे थे, तो वह जटावी के साथ मिलन और जटाई रक्षक भी बने और शूर्पनखा का वहां आना। ऐसी स्त्री या ऐसी राक्षसी जो रावण की बहन ही थी, उसके नाखून एक एक नाखून सूप जैसा। हाँ, सूप जानते हो, सूप माहिती है का? स्त्री आज उसका उपयोग करती है, तो एक नाखून में एक एक सूप, ऐसे 5 सूप कहिए, शूर्पनखा। ऐसी परंपराएं वाले कुछ मिलती है देखने को आजकल, ये 5ों नहीं तो कुछ नाखून। तो हुआ तो उसका प्रस्ताव था जो राम को मंजूर नहीं था, और फिर वो जिद लेके बैठी तो लक्ष्मण के पास भेजा और फिर लक्ष्मण ने उसके नाक को काट दिया और नाक जहाँ गिरा उस नगरी का नाम हुआ नासिक। नासिक नगरी का आपको पता चला शूर्पनखा का स्मरण दिलाती है वो नगरी। तो फिर खरदूषण 14,000 उनके असुर मंडली, राम ने उनका उनका भी वध किया। रोती हुई लंका पहुंचती है शूर्पनखा, ये किसने किया तुम्हारा हाल? तो सब सुनाती अपना अनुभव, लेकिन उसकी जो स्त्री है उस राम की वैसे तुम्हारी होनी चाहिए थी तुम्हारे लिए। क्या हुआ इस प्रकार ये रावण का विचार बनता है तो बदला भी लूंगा मैं और सीता को भी प्राप्त करूंगा मैं, सीता को भोगूंगा मैं। तो मरीचि को जाने के लिए प्रस्थान किया, तुम साथ में चलो। लेकिन मरीचि जानता था राम के सामर्थ्य को, वो तैयार नहीं था। समझा बुझा रहे, नहीं 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 राम, राम से दूर रहो, जान बचानी है जीवित रहना है तो राम से दूर रहो। लेकिन रावण मानने वाला नहीं था, तो तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। तो वह मरीचि ने सोचा कि वहां जाऊंगा तो राम मुझे मारेंगे, राम के हाथों से मैं मरूंगा। अगर नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथ से मुझे मरना है, तो चलो चलते हैं, मरना ही है तो राम के हाथ से मरते हैं। तो दोनों पहुंचे नासिक पंचवटी, और फिर आप जानते हो मरीचि हिरण बना, ऐसी सिद्धि उसको प्राप्त थी। सीता चाहती थी तो राम पीछा कर रहे थे उस हिरण का। लक्ष्मण ऐसी ध्वनि सुनते ही जाओ 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 लक्ष्मण जाओ। तो लक्ष्मण तैयार नहीं थे, वे जानते थे कि एक तो मैं ये ध्वनि तो मेरे राम की नहीं है, और राम और संकट में ये भी संभव नहीं है। लेकिन फिर जाना ही पड़ा, गए लक्ष्मण भी। तो भिक्षाम देही, तो ब्राह्मण के भेष में पहुंचे रावण, और फिर सीता का हरण, जटावी के साथ युद्ध आकाश में। जटायु का लगभग वध हुआ, कुछ गिर गया, कुछ जान बची थी। तो लक्ष्मण और राम जब सीते खोज रहे हैं कहा तो जटायु को देखे तो वह सारा लथपथ हुआ था खून से। तो पहले तो उन्होंने कहा यही तो कारण है, शायद इसने ही कुछ किया है सीता के साथ। लेकिन समझ गए फिर जब पूरा वृत्तांत सुना, और जटायु ने अपने प्राण राम के गोद में ही आखिरी सांस ली। जय श्री राम कहते हुए राम का दर्शन कर रहे थे, राम का नाम मुख में, और अंति नारायण स्मृति। आगे बढ़े भी आगे पूरा, तो मुझे रामेश्वर पहुंचना है। क्या हुआ तो किष्किंधा पहुंच जाते हैं, उसके पहले शबरी है। वह शबरी ने बेर खिलाए, वही प्रतीक्षा में थी। आगे बढ़ो, काम काम होगा बेटा, काम होगा, आगे बढ़ो। तो वह हनुमान के साथ मुलाकात, और सुग्रीव और फिर सीता की खोज के लिए टीम को भेजा। हनुमान पहुंचे, पता लगवा के लौटे किष्किंधा, गले लगाए श्री राम ने, शाबाश राम हनुमान। मैं इस समय अयोध्या में होता तो बहुत बड़ा पुरस्कार देता तुम्हें, लेकिन मैं तो वनवासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, तो बस इफ यू डोंट माइंड, इतराज नहीं हो तो मेरे आलिंगन को स्वीकार करो। तो हुआ आलिंगन में बाहुपाश में भरा निमान को, और फिर पता चला ही था तो वानर सेना को लेके और कुछ भालू सेना को लेके भी भगवान अब प्रस्थान करते हैं। लक्ष्य है लंका, गंतव्य स्थान, पहुंच जाते हैं रामेश्वर, पहुंच जाते हैं। तो वहां 3 दिन प्रतीक्षा हो रही थी, लेकिन बीच में समुद्र है और समुद्र देवता कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ सुझाव कुछ योगदान या दर्शन भी सामने भी नहीं आया। तो 3 दिनों के उपरांत श्री राम बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपना धनुष और बाण उठाया। मैंने बताया नहीं सर, राम टेक में थोड़ा पीछे थोड़ा रिवर्स जाके राम ने वही राम टेक में प्रतिज्ञा की थी, वहाँ भी धनुष और बाण लिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ संसार के सारे असुरों से इस पृथ्वी को मैं मुक्त करूंगा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। तो राम ने वह प्रतिज्ञा की ही थी, रामटेक मतलब प्रतिज्ञा, रामटेक में रामगिरी। तो राम के धनुष की टंकार की ध्वनि से और राम के उस क्रोधित कटाक्ष से, कृपा कटाक्ष नहीं थी उसे, सारे समुद्र को वो हिला रहे थे, समुद्र में सारा आंदोलन उत्पन्न हुआ, सारी लहरें सर्वत्र और सारे जलचर प्राणियों का बहुत बुरा हाल हो रहा था, बड़े बड़े मछलियां भी की जान खतरे में थी, तो छोटे छोटों का तो पूछना ही क्या। तो उस स्थिति में फिर समुद्र देवता कुछ जग गए या पता चला ये जो प्रभु है, ये मेरे प्रभु है, ये भगवान है, तो सामने आया मिले और क्षमा याचना देरी के लिए और प्रस्ताव रखा कि आप लंका पहुंचने के लिए मेरा उपयोग कर सकते हो, आप पुल बना सकते हो और ये पुल आप जो बनाओगे इसे आपका नाम अभी तो उपयोग होगा ही, आप लंका पहुंच पाओगे पहुंच जाओगे और भविष्य में ये मेमोरियल होगा, ये स्मरण दिलाएगा सारे संसार को आपका और आपके लीलाओं का, ये राम सेतु ये विशाल और अद्भुत पुल होगा, 100 योजन 800 मील लंबा पुल, न तो बना है न तो बनेगा, न भूतो न भविष्यति जैसा पुल। तो नल को नियुक्त किया, इट्स लाइक अ हनुमान एंड कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो नल कुछ लीडर बने, विश्वकर्मा के पुत्र और फिर वानर सेना अब सारे वनों में जंगलों में और पहाड़ों में सर्वत्र जो 1,000 कोटि संख्या में ये वानर थे। जय श्री राम। और ये राम की वानर सेना, वन में रहते थे तो वही की सेना को उन्हें रिक्रूट किया। और भालू भी तो वे बड़े बड़े पत्थर क्या पहाड़ और पेड़ उठा के खेल खेल में, बाएं हाथ का खेल या दाहिने हाथ का खेल उनकी प्रवृत्ति होती है, उसका सारा उपयोग किया। और सारे ला रहे थे पर्वतों को, पहाड़ों को, चट्टानों को, वृक्षों को, और उनको समुद्र में फेंका जा रहा था। और वो पगडंडी रास्ता नहीं बना रहे थे, वैसे वर्णन आता बड़ा विशाल, केवल 800 मील लंबा ही नहीं लेकिन चौड़ा भी, क्योंकि करोड़ों की सेना थी वहां, उनको पार करना था पुल। कहते कि रामेश्वर दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत के सारे कई सारे पहाड़ों के शिखर और वृक्ष, और फिर सेंट्रल इंडिया करते करते वो उत्तर भारत की ओर जा रहे थे। वानर आते और जाते, फेंकते बैक एंड फोर्थ, वृंदावन तक पहुंचे। उनकी नजर गोवर्धन पर थी, गोवर्धन को उठाने वाले थे वे, लेकिन इतने में घोषणा हुई कि ब्रिज का कार्य पूरा हो चुका है, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये समाचार वैसे गिरिराज को भी पता चला, तो वैसे गिरिराज थोड़े नाराज हुए, गिरिराज गोवर्धन। वो सोच रहे थे कि मेरी, मैं कुछ सेवा करता, मुझे भी राम के चरणों का स्पर्श होता, लेकिन वो निराश नाराज गिरिराज को बताया गया, नहीं नहीं समय आएगा भविष्य में, यही राम जब श्याम बन के आएंगे तो तुम पर कभी चढ़ेंगे भी, चरणों का स्पर्श भी, लेकिन एक विशेष लीला होगी तुम्हें, वे अपने हथेली पर या उसे उंगली पर उठाएंगे और इसी में आपका, तुम्हारा भी गौरव और कृष्ण का भी गौरव होगा। तो उस समय की प्रतीक्षा करो। तो गिरिराज शांत हुए और उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जो जो हुआ पत्थर गिराए जा रहे थे, फेंके जा रहे थे, उस पर तुरंत ही राम के नाम का स्टैंप लगता था या कुछ लिखते होंगे, राम का नाम के स्पर्श मात्र से या लिखने मात्र से या सानिध्य मात्र से वे सारे पत्थर भी जल में तैरने लगते, तैर रहे थे। जय श्री राम। तो वे तो पत्थर, निर्जीव पत्थर वे भी तैर रहे थे राम के सानिध्य से, राम के नाम के स्पर्श मात्र से, लेकिन हम तो उसे निर्जीव नहीं, हम तो सजीव है, आत्मा सजीव है। तो अगर हम राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम तरेंगे कि नहीं? हम भी तर सकते हैं, ये भी शिक्षा मिलती है। ये ब्रिज बन रहा था ऐसे वहां कहा, तो वह भगवान की ही रचना से, तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया, जो गुरुत्वाकर्षण, एक छोटी सी पिन या कोई कण भी जल में हम रखते हैं तो तुरंत डूब जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन यहाँ तो पहाड़ तैर रहे थे, पत्थर वृक्ष तैर रहे थे, ये राम ये सब कुछ उनके कंट्रोल में सब है, मयाध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचरा चरा, और योगेश्वर भी है तो वह भारी वस्तु को वह हल्का भी बना सकते हैं, जब जो असंभव है वो संभव कर सकते हैं, ये भी देखा जाता है यह इस पुल के राम सेतु जो यह बना, और ये कार्य पूरा केवल 5 दिनों में पूरा किए, 800 योजन, तो हर रोज बना रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जस्ट नोटेड थी, सौ योजन, एक योजन का 8 मील होता है, 800 मील, 100 योजन, तो पहले ही दिन उन्होंने 14 योजन पुल बनाया, फिर दूसरे दिन 21 योजन का आगे बढ़ाया, और फिर तीसरे दिन 22, 23 और 24, नो नॉट 24, 20, 21, 22, 23 और 14, इसका ग्रैंड टोटल हुआ 100 योजन पुल, 800 मील का पुल 5 दिनों में पूरा हुआ। स्वारगेट यहाँ भी पुल बना रहे हैं, शायद 5 साल से बन ही रहा है, जो 800 मीटर भी नहीं है, ये 800 मील, 5 दिनों में इट वॉज रेडी टू गो। तो इसी रामेश्वर में कोदंड राम का मंदिर है, जहाँ विभीषण आए, वे भी आकाश मार्ग से आए, जैसे हनुमान जैसे गए थे आकाश मार्ग से, तो विभीषण भी आए थे, लेकिन जब राम को जाना था निश्चित वे भी जा सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जो है अपनी नर लीला जो दिखा रहे हैं, जैसे राधे श्याम प्रभु नर लीला में भगवान, और इसमें अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वह अपने भक्तों को तो विशेष शक्ति प्रदान किए, उड़ान भरे हनुमान और रिटर्न फ्लाइट भी हुई, लेकिन स्वयं को जाना था तो वे चल के जा रहे हैं श्री राम, वैसे वनवासी भी है तो चल रहे हैं, पैदल चल के गए, तो वहाँ से विभीषण जब आते हैं तो विभीषण का मिलन राम के साथ इस रामेश्वर धाम में ही हुआ, और शरण में आया है ना, तो कई लोग कई प्रकार के अपने मत मतांतर, नहीं ये असुर है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो कुछ उसको स्वीकार करने के पक्ष में थे, कुछ विरोध में थे, लेकिन राम ने कहा अगर वो शरण में आया है ना तो हुआ, मैं स्वीकार करूंगा। बोल आज तो हुआ विभीषण शरण में आए, तो कल रावण आपके शरण में आते हैं तो उनको मैं स्वीकार करूंगा, शरण में आते हैं तो। राम भक्त वत्सल है या शरणागत वत्सल है, तो विभीषण को भी उन्होंने, विभीषण राम के भक्त, लंका में हनुमान जब पहुंचे तो राम 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 की ध्वनि कहाँ से आ रही थी, तो वो विभीषण का स्वयं का निवास स्थान वहाँ तुलसी और सब, तो उस भक्त को भी भगवान ने इसी रामेश्वर धाम में आश्रय दिया, स्वीकार किया तो ऐसे श्री राम को हमारे बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने वाणी को यही विराम मैं देता हूँ और औरों की वाणी और आगे कार्य करेगी, गाएगी, गुण गाएगी, कुछ आरतियाँ भी होगी और भी सूचना है। और कल हम लोग द्वारका धाम की और उसी के साथ कौंडिन्यपुर धाम और
हरे कृष्णा बैठिए बैठिए
की यात्रा है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की सियावर रामचंद्र की रामेश्वर धाम की हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि महाराज श्री के मुखारविंद से अविरत रूप से हम लोग यहाँ पर भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। यह कथा गए 14 वर्षों से निरंतर रूप से चलती आ रही है और बहुत सारे बड़े बड़े सहयोगी हैं जो हम लोगों को सहायता करते हैं, उनकी सहायता से यह कथा संपन्न हो पाती है। तो हमारे इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान जयप्रकाश जी सीताराम जी गोयल यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि स्टेज पर आरती के लिए जो गोयल गंगा परिवार के जितने उपस्थित यहाँ पर सदस्य हैं उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आरती के लिए ऊपर आएं। उनके साथ ही साथ गीता माता जी भी यहाँ पर आई हैं, उनके दोनों सुपुत्र अमित जी एवं अतुल जी हैं। आज अतुल जी के जो सुपुत्र हैं श्रीमान जयप्रकाश जी के जो नाती, उनका जन्मदिन है, जिनका नाम है कृतेश, बर्थडे बॉय, तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है केक की विशेष। तो अभी यहाँ पर हमारे श्यामानंद प्रभु जो आए हैं वृंदावन से, वे प्रभु रामचंद्र की बहुत सुंदर स्तुति गाएंगे और साथ ही साथ भागवत की आरती संपन्न होगी और आरती के पश्चात सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो मैं निवेदन करता हूँ सब लोगों को कि सब लोग इस संपूर्ण कार्यक्रम में सहभागी हो और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। एक सेकंड के लिए जयप्रकाश जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे आगे आए यहाँ पर। और हमारे भागवत सप्ताह समिति की ओर से बहुत विशेष पुनेरी ये पगड़ी महाराज जी के हाथों से वे स्वीकार करें, ऐसी मैं विनती करता हूं उनको।
आवाज
सब लोगों को हरी बोल कहना है, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और महाराज जी के द्वारा उनको माल्यार्पण होगा, महाप्रसाद, महाराज जी का महाप्रसाद वे स्वीकार करेंगे माला के रूप में। हरी बोल, आभारी हैं उनके और आशा करते हैं इस प्रकार से अविरत रूप से निरंतर रूप से वे हमें सहायता करते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो अमित गोयल जी को मैं प्रार्थना करता हूँ, वे आ गया है, कृतेश सामने आओ, सभी परिवार पहुंचा दो। तो यहाँ पर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का महाप्रसाद केक कृतेश जी के लिए लाया गया है, ही इज अ बर्थडे बॉय। हम आभारी हैं समस्त गोयल गंगा परिवार के कि उन्होंने बहुत विशद मात्रा में हम लोगों को यहाँ पे सहायता की है, जिसकी वजह से यह भागवत कथा संपन्न हो सकी है। हमारे श्रीमान केशव प्रभु जी अमित जी का स्वागत कर रहे हैं। हरि वो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जयप्रकाश जी से कि वे अपने दो वचन मनोगत एक दो शब्दों में यहाँ पर व्यक्त करें तो बड़ी कृपा होगी।
संस्था हर साल इस भागवत कथा का आयोजन करती है। मैं भागवत कथा को एक ऐसा मानता हूँ कि जो भगवान कृष्ण ने 5100 साल पहले जो अपने उपदेश दिए थे, उस समय उनका जितना महत्व था, आज भी अपने हर आदमी के जीवन में उन उपदेश का उतना ही महत्व है। अगर हम भगवत गीता के सभी भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में अगर हम अपनाते हैं तो शायद आदमी अपनी जीवन को बहुत सफल रूप से जी सकता है और एक आदर्श देशभक्त या आदर्श नागरिक बन सकता है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में सबसे बड़ा उपदेश कर्म योग का दिया है, वो इतना फलदायक है, अगर आदमी सही तरह से सही कर्म करता है तो ऐसा कभी होता नहीं कि उसका आदमी को फल नहीं मिलता है। मैं अपने जीवन में उसी उपदेश को अपनाता हूँ और मैंने आज तक देखा है, अगर सही ढंग से काम करते हैं तो उसका जरूर अपने को फल मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली क्योंकि भाग्य का था, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर आदमी सही तरह से काम करता है और सही उसके प्रयत्न रहते हैं तो अच्छा फल जरूर मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो अपने काम करने के उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई ऐसा रहता है, क्योंकि आदमी अपना भाग्य अपने कर्मों से स्वयं बनाता है। आप लोग सब आज भागवत गीता के इसको 7 दिन तक उपदेश सुनेंगे और शायद आप इन उपदेशों को अपने जीवन में करेंगे, इसी भावना के साथ हमने यहाँ पे हमारा सहयोग दिया है। आप सब लोगों का मैं इसमें यहाँ उपस्थित हूँ, धन्यवाद। इस्कॉन संस्था का भी बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जयप्रकाश जी गोयल साहब। तो केक कटिंग हो, तो यहाँ पर श्यामानंद जी भजन गाएंगे और साथ ही साथ आरती भी होगी। आरती भी होगी। भगवान का महाप्रसाद केक यहाँ पर लाया गया है कृतेश के लिए।
कृपालु भजो मन हरण भव Thank you. कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषण आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषण श्री इति वदति
राम राम राम
few minutes more.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Oh,